वाकई उसने गाया। अधी रात बतीत हुई कि जद मैं इतिहास पढ़िया तो सबर दी दाद देनी पेगी अकबर देवी कि उड़ीकदा रहा कदों गाएगा। नहीं तो इतना सम्राट मुगले आजम तो इतना सुख रहना थोड़ी जी गल ते बेचैन हो सकता सी वापस जा सकता सी। उते सबर नू दाद देनी पेगी। जदों गाया है विस्मात तारी हो गया तो अकबर ने पहला प्रश्न तानसेन ते ए कीता, तेरी गायकी ते इतना रस क्यों नहीं है, तेरी गायकी इतनी बुलंद क्यों नहीं है। ये पहला प्रश्न सी अकबर का, मुद्दतां तो सुनदा आ रहा सी तानसेन नू, तेरी गायकी दे च इतनी प्रवाज क्यों नहीं है, इतनी बुलंद क्यों नहीं है। तानसेन ने कह दिता गल स्पष्ट है, हरिदास गाउंदे ने परमात्मा वास्ते, मैं गाउंदा तेरे वास्ते। जितना वड्डा परमात्मा है उस परमात्मा वास्ते अगर गाया गया तो उतना ही वड्डा होगा, उतना ही बुलंद होगा। मैं गाउंदा तेरे वास्ते तो तू जितना है तेरे तो उच्ची गायकी किस तरह जाएगी मेरी, मैं तो सिर्फ तेरे वास्ते गाँगा। इस वास्ते मेरी गायकी दे च बुलंदी नहीं है, मेरी गायकी दे च इतनी परवाज नहीं है, मेरी गायकी दे च इतनी उच्चता नहीं है। तो हरिदास गाउंदे ने परमात्मा वास्ते, तो परमात्मा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है तो परमात्मा वास्ते जो गाया गया है वो गायकी भी बड़ी बुलंद होती है, बड़ी उच्ची होती है। तेरे ते मेरे च जो संबंध है, मैं गाउंदा तू सुनदा, तो जितनी तेरी हस्ती है उतना ही मेरा संगीत है, जितनी परमात्मा दी हस्ती है उतना हरिदास दा संगीत है। इस वास्ते भगतां ने जो कोई बोल बोले ने तो उन्हां बोलां नूं अमर बोल आख्या गया, उच्चे बोल आख्या गया, महान बोल आख्या गया, खसम दे बोल आख्या गया, अमिट बोल आख्या गया, अमृतमई बोल आख्या गया। इतना गहरा उन्होंने सुने है कि उन्हां दा बोलिया होया, उन्हां दा गाया होया एकदम बुलंदियां नूं छू गया। मैं फिर अर्ज करा, जिथे जद किसी दे बोल बड़े बुलंद दिखाई देन समझ लेना जड़ां बहुत गहरियां ने, बहुत गहरियां ने। ते ए बार दा प्रमाण सार्थक है कि जिस दरखत दियां जड़ां बहुत गहराई च नहीं जाणगियां वो बहुत उच्चा भी नहीं उठ सकेगा। जिदे बोल बहुत उच्चे ने उहदी स्रोत बड़ी गहरी होवेगी, उन्हें सुनिया बड़े ध्यान नाल होवेगा। वाहेगुरु वाहेगुरु उच्चारण करदियां भी बड़े ध्यान नाल उसने सुनिया होवेगा, उन्हें गुरु दे बोल बड़े ध्यान नाल सुने होणगे, बड़े गहरे तल नाल सुने होणगे। ते जितनी गहराई नाल सुनिया होवेगा उतने उच्चे बोल प्रगट होणगे। तो साहिब कहिंदे ने खुशी दे गीत गा, सोहिला गा निर्भव दा गा, भयभीत दा की सोहिला गाणा। तानसेन सारी जिंदगी डरिया ही रहा, भयभीत रहा, लंबी चौड़ी गाथा है। अकबर वास्ते गाउंदा सी, अकबर आप डरिया रहिंदा सी, मेरा राजपाट कोई खो ना लवे, राजपूतां नाल झगड़ा लैंदा सी, किधरे ना किधरे बगावत हो जांदी सी, नींद हराम हो जांदी सी। ते इस तरह दी बंदे दी खुशी वास्ते अगर गाया जाए तो जिहड़ा आप भयभीत है वो गायकी भी पै दे विच होवेगी, उच्ची नहीं हो सकती, बुलंद नहीं हो सकती। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने खुशी दे गीत गाओ, किस दे, निर्भव दे। ते निर्भव केवल निरंकार है, निर्भव केवल परमात्मा है, निर्भव केवल अकाल पुरख है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने ये खुशी दे गीत तू गा, पर किथे गाईए, किहड़ी थां ते गाईए, गाण दी प्रेरणा कित्थों लईए। तो सतगुरु देव जी महाराज ने जो बोल इत्थे अंकित कीते ने आप जी दे सामने रखा, जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो। जिस घर दे च कीर्ति आखी जांदी है, कीर्तन कीता जांदा है, जिस घर दे च बैठ के करते पुरख दी विचार चलदी है, कीर्तन चलदा है, विचारां चलदियां ने, बोल चलदे ने, और जितने ज्यादा जिस घर दे च बोल चलन वह घर उतना ही पवित्र हो जाता है। और एक दिन इतना पवित्र हो जाता है कि उस घर नूं तीरथ कहना पैंदा है। ये तीरथ धार्मिक मंदिर ते बहुत सारे ने पर तीरथ थोड़े ने, गुरुद्वारे बहुत सारे ने पर जिन्हां गुरुद्वारियां नूं असीं तीरथ कह दिंदे आ थोड़े ने। हिंदुओं के मंदिर लखां ने हिंदुस्तान दे च, पर तीर्थां दी गिणती सिर्फ 68 है, 68 ते मंदिर 68 एक शहर दे च मिल जाणगे। धार्मिक मंदिर ते एक एक शहर दे 100-100 मिल जाणगे। राजस्थान दे शहर हर गली दे 4-4, 5-5 मंदिर ते पूरे एक शहर दे 150-150, 200-200 मंदिर ने। पर समुचे भारत दे च तीरथ ते कुल 68 ही बनदे ने हिंदुआं दे, ते मंदिर गिणोगे ते लखां ने। हूबहू एक गल इत्थे मनुख दे अंदर पैदा होंदी है कि धार्मिक मंदिर ते तीर्थ दे चाखर अंतरा की है। बहुत वड्डा अंतर है, बहुत वड्डा अंतर है। जिथे बहुत ज्यादा गावया गया है, जिथे बहुत ज्यादा कीर्ति कीती गई है और इतनी कीर्ति कीती गई है कि उस थान का माहौल ही ऐसा हो गया है हुण कोई बैठे तो उसकी रसना अपने आप गायन कर लग पवे। इस तरह के अस्थान नूं, इस तरह के मंदिर नूं तीरथ कहिंदे ने। अगर कोई मनुख चाहे तो अपना घर भी तीरथ बना सकता है, बन जाता है। बहुती सिफत सलाह है, बहुता ही जप तप घर दे चलदा है, घर तीरथ बन जाता है। इस वास्ते भगतां दे घर अज भी तीरथ ने। कबीर जिस घर दे च रहे बनारस दे च लोकी जांदे ने उस घर दे दर्शन करना, तीरथ है। गुरु नानक देव जी महाराज जिस घर दे च वड्डे होए, पालन पोषणा होई, आले दुआले बच्चियां नाल खेडदे रहे, सब तीरथ बन गए। तलवंडी ननकाणा साहब बन गए। जिथे जिथे बच्चियां नाल खेडदे रहे ते खेडदे च भी बंदगी सी, बच्चियां दे नाल खेडदे ने ते सतनाम जपदे ने, जपांदे ने। इंज कह लो आम मनुखां दी ते बंदगी भी खेड है, गुरु नानक दी खेड भी बंदगी सी। बस इतनी गल है। आम बंदियां दी जिहड़ी ये बंदगी है ना, खेड है। मैं घूम फिर के बाहर दे मुल्कां च जो देखा है वह सिर्फ एक समाजिक इकट्ठ में देखा है, बहुत सारी थावां ते। इत्थों बारे तुसीं निर्णा आप करना, लेकिन मैं जो घूम फिर के देखे एक समाजिक इकट्ठ बंदियां दा आपस दे च मेल जोल, गुरु नाल मेल होंदा है कि नहीं, परमात्मा नाल मेल होंदा है कि नहीं, कोई गल ही नहीं। बंदे दा बंदे नाल मेल हो जाए और खुशी बहुत, बंदे दा बंदे नाल मेल हो गया, कोई इस गल दी चिंता नहीं गुरु नाल मेल होया है कि नहीं, अकाल पुरख नाल मेल होया है कि नहीं, कोई ओदी गल सुनी है कि नहीं, कोई ओदे बोल रसना चो निकले ने कि नहीं, कोई सुरत ओदे नेड़े गई है कि नहीं, इस तरह की कोई सोचनी नहीं। बंदे दे नेड़े चले गया कि नहीं, और बंदे नाल संबंध जुड़िया कि नहीं, ये समाजिक इकट्ठ हो गया, धार्मिक इकट्ठ तो नहीं है फिर, ये समाजिक इकट्ठ। तो आम बंदे दी ते बंदगी भी खेड है और कुछ नहीं। भगत कबीर कहिंदे माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। कईयां ने बंदगी नूं खिडौना ही समझे और कुछ नहीं। पर गुरु नानक दी खेड भी बंदगी है, जे बच्चियां नाल खेडदे भी ने ते बंदगी है। ध्यान रब नाल, ध्यान निरंकार नाल, खेडदे बच्चियां नाल पए ने, जुड़ जांदे रब नाल, बच्चियां नूं भी जोड़ देंदे ने। खेड भी बंदगी है, बच्चियां नाल खेलना भी बंदगी है। ते खिमा करनी आम बंदियां दी ते बंदगी भी खेड है और कुछ नहीं है, तमाशा है और कुछ नहीं, खिडौना है, खिडौणियां दी खेड है और कुछ नहीं है। तो इस तरह के पुरश जिथे खेडते भी ने, जिस जिस थान ते खेडते भी ने, वो थान भी तीर्थ बन जाते। ननकाणा साहब दे अस्थान है बाल लीला, जिथे सतगुर बच्चियां नाल खेडते रहे। उस थान दे विच भी इतनी कशिश है, दास दो तीन दफा जो उत्थे हाजरी भरी है, उस जगह दे अज भी कशिश है, है तो बाल लीला बच्चियां नाल सतगुरु खेडदे ही रहेंगे, पर खेड बंदगी सी, खेड इबादत सी, खेड रब नाल जुड़न दी सी। उस बाल लीला स्थान दे अज भी कशिश तीरथ है, अज भी रब की तरफ सुरत खिंचती है, अज भी मनुख की सुरत नूं उह बाल लीला अस्थान किसी पवित्रता दे केंद्र दे चले जांदा है। तो मैं अर्ज करा हिंदुआं दे जे मंदर गिणीए तो लखां तो भी अगान है, हर शहर दे च 100-150-200 मंदर ने, लेकिन तीर्थ कुल 68 ने। तीर्थ तो मुराद जिस थां ते इतना गाव्या गया है, जिस थां ते प्रभु की इतनी चर्चा की गई है, जिस थां ते बैठ के इतनी परमात्मा की विचार की गई है कि उस थां दे उत्ते हुण सिवाए परमात्मा दीआं तरंगां तो होर कुछ भी नहीं, उहदे गीतां तो होर कुछ भी नहीं, ते हुण नास्तिक तो नास्तिक भी उत्थे आ जाए, कठोर तो कठोर भी उत्थे आ जाए, उहदे मन दे विच भी कोई प्रभु मिलण की तांग पैदा होवे, तड़प पैदा होवे, इस तरह के अस्थान नूं कहिंदे ने तीरथ। साहिब कहिंदे ने जिस घर दे विच करते पुरख की कीर्ति गायन की जा रही होवे, जिथे उसके गुणा की विचार हो रही हो, बंदे तू उथे सोहे लागा, क्योंकि तेनों प्रेरणा उतो ही मिलेगी, उस तो बिना प्रेरणा नहीं मिल सकती। मनुख का मन करते पुरख ने इस ढंग का बनाया कि हर गल तो प्रभावित होंगे, उस घर तो भी लाजमी प्रभावित होगा जिथे उस निर्भव का सोहेला गायन हो रहा है और उस निर्भव की विचार हो रही है। साहब कहने जिथे उस करते पुरख की कीर्ति आखी जा रही है और विचार की जा रही है, तित घर गाओ सोहेला सिमरो सिरजनहारो, ओ सिरजनहार जगत का प्रतिपालक बनाने वाला, फिर तू उस घर दे उसका सोहेला गा, खुशी दे गीत गा, ओदा सिमरन कर, सोहेले दे राही गीत दे राही संगीत दे राही तो उहदे नाल संबंध जोड़। तो मैं कल अर्ज की सी संबंध सिमरन दे ने, सिमरो सिरजन हारो, संबंध खून दे नहीं, संबंध सिमरन दे ने, याद ने। कोई किसनों कितना कि याद करता है, याद नाल संबंध जुड़िया रहिंदा है, याद नहीं करता संबंध टुट जाता है, याद चो निकल गया है भुल गया है संबंध तो टुट गया, गल खत्म। थोड़ी थोड़ी याद बाकी है संबंध है, बहुती याद है बहुता गूढ़ा संबंध हो गया, भुलदा ही नहीं, हर वक्त याद विच है, उठदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां हुण उसे दी याद। तो इसनों कहिंदे ने गूढ़ा संबंध, बहुत गूढ़ा संबंध जुड़ गया, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। गुरु अमरदास जी महाराज कहिंदे ने एक दम भी व्यर्थ ना चला जाए, दम दम दे च उसकी संभाल है, दम दम दे च उसकी याद है। तो याद ही संबंध जोड़न का वसीला है। साहब कहते जिस घर दे च करते पुरख की कीर्ति गायन हो रही है, उहदे गुणा की विचार हो रही है, उस घर दे च बैठ के तू सोहेला गा, गीत गा। और साहब कहते ने मैं सदके जाना, वारने कुरबान जाना, उस सोहेले तो उस घर तो जिस सोहेले के गायन करन नाल सदीवी सुख की प्राप्ति हो जाती है, हकीकी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अगां पंक्तियां, नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कावन सुमार। निता प्रति यह नहीं कि संगरांद वाले दिन उसका चिंतन करना है, इतवार वाले दिन उसका चिंतन करना है, नित नित की प्रेरणा देती है। रोज़ अन्न रोज चाहिदा है, पानी रोज चाहिदा है, भोजन रोज चाहिदा है, ईश्वर की संभाल भी रोज चाहिदी है, रूहानी गजा है, रूह का भोजन है। शरीर नू कुछ दिन लगातार भोजन ना देईए कुमला जाता है शरीर, मुरझा जाता है, और जो बिल्कुल ना देईए तो मर भी सकता है, खत्म भी हो सकता है, रूहानी मौत भी कईयां दी हो जाती है, जो भुल जाते हैं, बिल्कुल भुल जाते हैं, जिसनों सतगुरु कहिंदे ने आखा जीवा बिसरे मर जाओ, मरणंग बिसरंग गोबिंदे जीवणंग हर नाम ध्यावणे। तो साहब कहिंदे ने तो निता प्रति उसकी संभाल कर, संभाल तो मुराद उसका चिंतन कर, उन्हों याद कर। जो सदीवी देखता है और देनहार है, जो मंगना लेना नहीं जानता देना जानता, देखेगा देवनहार। तेरी संभाल नू, तेरे चिंतन नू उस प्रभु ने वेखना है, वो वेख रहा है, वो दाता दे रहा है और उस तो हमेशा ही देना ही प्रगट होंदा। इस वास्ते परिपूर्ण परमात्मा नू दाता राखे, वड्डा दाता तिल ना तमाए, पहाड़ जितना दे के जो तिल जितनी भी मंग नहीं रखता। तिल जितना दे के अक्सर मनुख पहाड़ जितनी मंग रखता है, पहाड़ जितना दे के तिल जितनी भी मंग नहीं। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। साहब कहते हैं हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे दिते हुए दान की कोई कीमत है? इन्ना उंगलियां की कोई कीमत है? हत्थां की कोई कीमत है? हाँ, किधरे बाँ ना रवे, ईश्वर ना करे, तो फिर प्लास्टिक दी या लकड़ दी जद बाँ लवानी पैंदी उहदी ते कीमत है, पत्थर दी अखां लवानियां पै जांदियां ने उहदी ते कीमत है, लकड़ दी टंग लवानी पै जांदी है उहदी ते कीमत है। पर हे प्रभु, ये जो तू लत्तां दित्तियां ने, ये जो तू पैर दित्ते ने, इहदी कोई कीमत थोड़ी है, इहदा कोई मुल थोड़ी है, ये जिहड़ी तू रसना दित्ती इहदा कोई मुल है, ये जिहड़ा तू जीवन दिता है इहदा कोई मुल है। इसे नूं कहा अमुल गुण अमुल वापार। उस परिपूर्ण परमात्मा दे गुण नूं, उस दी देन अमुल है, कीमत नहीं पाई जा सकती। घर विच बिजली जल्दी है, महीने बाद बिल देंदे हां, सदियां तो सूरज रोशनी दे रहा है, दान विच दात है, उस तो मिल रही है दात। साहिब कहिंदे ने तेरी जिहड़ी दात है उहदी की कीमत पाई है? भाव कोई मुल नहीं है, अथाह दात है, अनंत दात है। और जब तेरी दात दी कीमत नहीं पैंदी तां उस दाते दा शुमार किस तरह करिए? तेरी दातां दी जो है शुमार नहीं, तेरी दात दी ही गिणती नहीं, तो उस दाते दा अंदाजा किन्ना क लाइए कि कितना क वड्डा है, जिहदी दात ही नहीं गिणी जा सकती, जिहदी दात ही नाप तौल दे च नहीं आउंदी, इतनी महान इतनी अनंत जिहड़ी उसने जीवां नूं दे रखी है, जिहड़ी उसने खंडां ते ब्रह्मंडां नूं दे रखी है, जिहड़ी उसने सूक्ष्म ते अस्थूल जीवां नूं दे रखी है, इतनी वड्डी दात जो गिणती च नहीं, दाता किस तरह गिणी है, उस महान दाने नूं किस तरह गिणी है, उहदा शुमार जो है किस तरह करिए। हुण सतगुरु देव जी महाराज मूल गल विच आउंदे ने कि संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल, गीत आख्या है खुशी दे गाओ, सुहिले खुशी दे गाने ने, ते खुशी उसे दिन ही आउंदी है जिस दिन जिंदगी दे च मौत दा भय ना रह जाए। मैं मर जाना है, मेरी किधरे इज्जत ना मर जाए, मेरा किधे माण मर्यादा जिहड़ी बनी हुई है नास ना हो जाए, मेरा किधरे बनिया होया चिंतन नास ना हो जाए, ज्ञान नास ना हो जाए, मौत दा ही भय है, ते खुशी दे सोहले किस तरह निकलणगे। पर यह जिहड़ा निर्भव दा सोहेला है, निर्भव दे गीत ने मौत नूं खत्म कर देंदे ने, भाव मौत दे भय नूं खत्म कर देंदे ने। ते मौत दा भय किस तरह खत्म हो जांदा है? मौत चेते रहिंदी है भगतां नूं, इन्नी मैं अरज़ करदे हां, मौत चेते है, मौत याद है। जन्म साखी दे च मैं एक गाथा पढ़ रहा सी, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने सुभावक पुछया मरदाने नूं, पुरखा तैनू अपनी जिंदगी का किन्ना क भरोसा है? महाराज की भरोसा है जिंदगी का? मैं इन्ना ही समझदा भी 100 कदम मैं चल लवां तो पता नहीं अगला कदम मैं पुट सकांगा कि नहीं। मुस्कुरा पे गुरु नानक देव जी, तो बाले नूं कहन लगे पुरखा तू दस तैनू अपनी जिंदगी का किन्ना क भरोसा है? महाराज मरदाने नूं 100 कदमां दा होवेगा, आपां ते समझदे हां जिहड़ा एक कदम पुटिया पता नहीं दूसरा पुट सकांगे कि नहीं। एक कदम दा भरोसा है, ज्यादा नहीं। उसे वक्त दोहां ने प्रश्न किया, महाराज आपनू अपने जीवन दा किन्ना क भरोसा है? साहिब कहिंदे ने हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मौत ना जाना। एक दम का ही भरोसा है, जिहड़ा मूंह दे च है पता नहीं दूजा आवना है कि नहीं, जिहड़ा दम मूंह दे च है इहदी ते गल कर सकदे हां, जिहड़ा अजे आया नहीं उहदा कोई भरोसा नहीं, पता नहीं आवना है कि नहीं। ते जद मौत दा चिंतन इतना गहरा होवे ते बहुत बुलंद जिंदगी मिलदी है। बुलंद जिंदगी उच्ची जिंदगी किस कोल होवेगी? जिस दे कोल बहुत गहराई विच मौत दी याद होवेगी। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, जिन्हों हर वक्त जिंदगी चेते है उन्हों हंकार चेते रहेगा, लोभ चेते रहेंगे, विकार चेते रहेगा, तृष्णा चेते रहेगी, वितकरे चेते रहेंगे, दुबदा चेते रहेगी, लड़ाई झगड़े चेते रहेंगे। ते जिसनों मौत चेते हर वक्त सब कुछ मिट जाएगा, ये सब कुछ नाश हो जाएगा। ये गल वखरी है कि सतपुरशां दी धार्मिक पुरशां दी गल आम नास्तिक लोगों ने समझी नहीं, तो उन्होंने यह कह दिता है धर्म का जन्म मौत के भय तो होया है। अगर मौत ना आती तो शायद धर्म ना आता, शायद परमात्मा ना आता। नास्तिक लोगों ने इस ढंग के भी बोल लिखे ने, खास करके बंगाल का प्रसिद्ध नास्तिक केशव चंद्र, उन्हें तो अथाह वड़ियां वड़ियां किताबा लिखिया, और मैं उसकी विचार इस गल के आले दुआले घूमती है, जे मौत ना आती तो शायद मनुख की दुनिया च रब ना आता। मौत के डर ने मनुख के अंदरों धर्म पैदा किया, मौत के डर ने मनुख नू मजबूर किया परमात्मा की पूजा करने, ईश्वर की पूजा करने। दरअसल केशव चंद्र बहुत गहरा नहीं गया, लेकिन उस दियां विचारां ने बंगालियां नू नास्तिक जरूर बना दिता। उस दी विचारां ने बंगालियां दे अंदर बगावत जरूर पैदा कर दी। अज अद्धे तो भी ज्यादा बंगाल करीबन करीबन नास्तिक हो गया और कम्युनिज्म की लपेट दे चा। वो विचारां उन्होंने चंगियां लग रही ने नास्तिकता दियां, क्योंकि एक बहुत उग्गा पंडित, एक बहुत सियाणा इस संबंध च बहुत कुछ लिख गया, बहुत कुछ लिख गया। तो हुण हैरानगी इस गल दी होई केशव चंद्र नूं, भई जितने भगत ने जितने संत ने वह भी कहिंदे ने मौत चेते रखो, जीवन चेते ही ना रखो। कहिंदा हद हो गई, ये तो अन्याय है मनुख नाल कि जीवन नूं भुला दईए मौत नूं चेते रखिए। जिंदगी कोल है, इहनूं ना चेते करिए, जो मौत अजे है नहीं उहनूं चेते करिए। दरअसल उसने मौत नूं गहरे तल विच वेखण की कोशिश नहीं की थी। रोज़ बंदा जी रहा है तो रोज़ बंदा मर रहा है, इन्नी मैं अर्ज करते हैं। मौत एक दिन नहीं कटती, रोज़ मौत हो रही है। रोज़ बंदा जी रहा है, रोज़ बंदा मर रहा है, तो तुसी आखोगे ते पहेली है, रोज़ किस तरह मर रहा है? बंदा एक दिन मरदा है, बंदा रोज़ मरदा है। जिसनों असी मौत कहने उस दिन संपूर्ण मर जाता है, पूर्ण मर जाता है, पर थोड़ा थोड़ा रोज़ मरदा है। एक बच्चा वड्डा हो रहा है, पर सिर्फ वड्डा नहीं हो रहा, छोटा भी हो रहा है। निश्चित जिहड़ी उम्र है वह तो रोज़ घट रही है। छिन छिन औद ब्यात है, फूटे घट ज्यों पानी। एक एक बूंद अगर घड़े दे चो पानी दी जो है निकल रही है, तो पानी तो घट रहा है, वध थोड़ी रहा है। साहिबां दी बाणी इत्थे फरमान करदी है बंदा रोज़ मर रहा है, बंदे दे अंदरों कुछ रोज़ मर रहा है, और इतने सूक्ष्म ढंग नाल मर रहा है, मरना दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके नाल बड़े सूक्ष्म ढंग नाल बच्चा वड्डा हो रहा है, तो इहदा वड्डा होना नहीं दिखाई दे रहा, इहदा मरना भी नहीं दिखाई दे रहा। मनुख दा वड्डा होना नहीं दिखाई दे रहा, मनुख दा मरना भी नहीं दिखाई दे रहा। वड्डा हो रहा है कोई दिखाई दे रहा है? भी किस ढंग नाल वड्डा हो रहा है? ये गति, ये चाल बड़ी सूक्ष्म है, मौत भी इतनी सूक्ष्म चाल नाल चल रही है, नहीं दिखाई दे रही, भगतां नूं दिखाई दे जांदी है। बंदे तू निरा रोज जी नहीं रहा, तू निरा रोज वड्डा नहीं हो रहा, तू रोज छोटा भी हो रहा है, तू रोज मर भी रहा है, तू रोज मिट भी रहा है। ते जिहड़ा तू रोज मिट रहा है इहनूं भी ते चेते रख, तू रोज वड्डा हो रहा है यही चेते है तैनूं, तू रोज मिट भी रहा है, तू रोज छोटा भी हो रहा है, तू रोज मर रहा है। अगर जीवना ही चेते रह गया तो मरना तो भुल गया, तो सिवाय औगणा की गठड़ी दे तेरे कोल होर कुछ नहीं आना, सिवाय चिंता ते सोग दे होर तेरे कोल कुछ नहीं होना। दबी हुई जिंदगी तो इलावा होर तेरे कोल कुछ नहीं होना। जितना गहरा जिंदगी दा चिंतन होवेगा उतने गहरे विकार होणगे, उतने औगणा दी पंड होवेगी। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਰਦਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿਟ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਬਚਪਨਾ ਮਿਟ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮਿਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਰੋਜ਼ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਚਪਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਗਈ, ਬਚਪਨਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਜੇ ਬਚਪਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਟ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਭੁੱਲੇ, ਮੌਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਔਰ ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜੜ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁਣ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਕਿਹਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁਰਾ ਰਾਈ ਦਸੈ ਭਾਇ। ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕੜੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਆਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮਹਿਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਕਸਿਓ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ। ਜਿਹਦੀ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੀ ਅਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਅਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਮੱਝ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਮੱਝ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਠੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਹਾਥੀ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ ਅਕਲ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ। ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਵੇਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਬੈਠਦਾ। ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਿੜ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ 'ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਖੇੜੇ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਖੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। जीवन भी जद मुरझांदा है, बुढ़ा बंदा हुंदा है, जिंदगी मुरझा चली है तो कमर झुकदी है, पर जद जवान है उपर नू उठदा है, फुल उपर नू उठदे ने, जद खिड़दे ने मुरझांदे ने ते थले जांदे ने। धर्म की गल सुनदिया सुनदिया जे सिर ढह गया है बंदे का, कमर झुक गई है, बोझल हो गया दिमाग, तो समझ लेना गल नहीं समझ चाहिए, स्पष्ट है गल। और धार्मिक मंदिरों में अक्सर सिर डटे हुए मिलते हैं। गुस्ताखी माफ खिमा मैं पहले मंग लिया, मैं तो एक लतीफा पढ़िया से हिंदुस्तान के एक हिंदी अखबार नवबार टाइम दे, एक मरीज डॉक्टर को गया, तो डॉक्टर पुछदा की रोग है तेनू, आखन लगा मैनू नींद नहीं पैंदी, और कुछ नहीं बस मैनू नींद नहीं पैंदी, और कोई बीमारी नहीं। तो डॉक्टर कहन लगा फिर कथा सुन चला जाया कर किसी मंदिर दे च, पै जाएगी नींद, आप गल समझ च नहीं आएगी, आपे सिर ढा के बैठेगा, और की है गल कोई धर्म की समझ च आँदी है, धर्म की गल कोई पकड़े च आँदी है, धर्म की गल नाल कोई तालमेल बैठता है, कतई नहीं, कोई बंदे का संबंध जुड़ता है, जिस गल नाल बंदे का संबंध जुड़ जाए, जिस गल नाल बंदे का तालमेल बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, सिर उच्चा हो जाता है, प्रफुल्लता खेड़ा मस्ती अंदर पैदा हो जाती है। तो अक्सर मैं रहन सुभाई कीर्तना च भी देखे है, कीर्तन रहन सुभाई हो रहा है, तो गुरुद्वारे का माहौल इंज बने आता है जिमें किसी होस्पिटल का जो है माहौल हो, सब मरीज दियाँ दिखाई देंगे, डटे हुए मायूस उदास, तालमेल नहीं बैठे। कारण मैं इतनी अर्ज करा, रब की गल कोई खिडौना नहीं। भगत कबीर जी कहते हैं, वह दरवाजा धर्म का द्वार, मुक्ति का द्वार, रब का द्वार, राई दे दाने का दसवां हिस्सा, कबीर मुक्त द्वारा संकुरा, संकीर्ण है, तंग है, छोटा है, सूक्ष्म है, कितना राई दसें भाए। सियाने कहते ने दार्शनिक कि कबीर की मजबूरी है, वरना प्रमाण इस तो सूक्ष्म उन्होंने देना से, पर इस तो सूक्ष्म है कि कुछ भी नहीं, राई दे दाने का दसवां हिस्सा करो पकड़ दे च भी नहीं आता, वरना इस तो भी उन्होंने सूक्ष्म कहना से, पर इस तो सूक्ष्म कहने से कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं, किड़ी चीज़ नू अगे करना, प्रत्यक्ष रूप में किस चीज़ नू अगे रखन। तो आपने ये कह दिता है, राई दसें भाए, मन तो मैगल होए रहा, निकसियो क्यों कर जाए। हुण राई दे दाने दा दसवां हिस्सा इतना छोटा दरवाजा, हुण मज लंघे सिंह मारेगी, लंघ तो नहीं सकेगी, बंदा टकरा अक्सर मारदा है, हैरान हो जाता है भी गल केड़ी आखी जा रही है, कितों की आखी जा रही है, ये कीर्तन कितों की गल है। तो मैं कई दफा हैरान हो जाता, मैं बुजुर्ग कई कहते हैं, ज्ञानी जी साढ़े बच्चों भी धर्म जो है समझा दो, तो मैं तो एक ही गल कहना हूं भी, तू समझ लिया पहले दस, बच्चे की गल छ, तू समझ लिया, तू जान लिया। मैनू कई कहते हैं, इस धर्म की गल बाकी जगत को भी पता चलना चाहिए, बाकी धर्म वाले भी पता चलना चाहिए, तेनू पता चल गया, तू समझ लिया, आप समझे नहीं, जगत को समझा चले भी, दूजियां भी पता चले, ईसाइयों पता चले, मुसलमानों भी पता चले, सिख हो के तेनू तो पता है कोई नहीं, तू सिख है, तेनू तो पता है नहीं कुछ, तू तो कुछ जाने नहीं, तू तो कुछ समझे नहीं, ईसाइयों समझा चले, मुसलमानों समझा चले, तू तो समझ पहले, तो जिस दिन तू समझ गया बाकी समझ जाएंगे, तेनू वेख के समझाएंगे, तेरी रोजमर्रा की जिंदगी ही बहुत कुछ दस देगी, तेरे जीवन का ढंग ही बहुत कुछ दस देगा। जरूरी थोड़ी है कि बोल दसते हैं जीवन का ढंग दसते हैं, जरूरी थोड़ी है कि बंदे के बोल ही कुछ धर्म की व्याख्या करते हैं, मनुख की जिंदगी के कर्म भी व्याख्या करते हैं, उसके जीवन का ढंग भी जो है व्याख्या करता है। तो मैं अर्ज करा, भगत कबीर कहते हैं, ये गल अत्यंत सूक्ष्म है, तो अकल मोटी है, अकल मोटी किस तरह होंदी है, अकल सूक्ष्म किस तरह होंदी है। हर वक्त मोटियां गल्लां नूं याद करना, संसार नूं याद करना, हर वक्त परिवार नूं याद, हर वक्त धन संपदा का चिंतन, हर वक्त मोटियां गल्लां दी याद, अकल मोटी हो जाएगी, लाजमी हो जाएगी। पर सूक्ष्म गल का चिंतन जितना ज्यादा होगा उतनी अकल बारीक हो जाएगी, उतनी अकल सूक्ष्म हो जाएगी। तो कबीर कहिंदे ने, इन्हां मज्जां नूं मैं लंघावां तो किस तरह लंघावां, उस दरवाजे चों जिहड़ा दरवाजा राई दे दाने दा दसवां हिस्सा है। इस वास्ते भगतां दी गल जगत ने नहीं समझी, कती कतई नहीं समझी, वरना भगतां नाल इतना टकराव ना आउंदा, किसी भगत नूं दुनिया ने चैन नाल नहीं बैठन दिता, ना कबीर नूं ना रविदास नूं। तुसीं इन्हां दी जीवन कथा पढ़ते लो, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਗ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੋਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਕੂਮਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੀਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਾ ਨੇ ਕਭੀ ਤੁਝ ਕੋ ਸੰਭਲ ਨੇ ਨਾ ਦਿਆ ਥਾ, ਆਰਾਮ ਸੇ ਪਹਿਲੂ ਕੋ ਬਦਲ ਨੇ ਨਾ ਦਿਆ ਥਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਦਾਵਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾਵਤਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਵਤ, ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਵਤ, ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਖਾਲਫ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ। ਕਾਰਨ ਇਤਨੀ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਮੱਝ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਦਈ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਦਈ ਜੋ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੁਵੇਦੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਇਹ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਖੱਡੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਤਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਝੁੱਗੀ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਮਸਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਜਪਤ ਤਨ ਜਰ ਕੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਰਹੋ ਸਮਾਏ। ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਮਸਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂ, ਜਿਸ ਰਸ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂ, ਕੋਈ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਖੁਦ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਬੌਰਾਨਾ ਪਾਗਲ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮ ਰਾਮ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਣ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰੀਕ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੂਤਣੇ ਉਤਾਰਨਾ ਆਇਆ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੋ ਸਮਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਬੇਤਾਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਰਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਬਾਰੀਕ, ਇਤਨੀ ਬਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਖੀਰਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ, ਚਰਾਗ ਬੁਝਨੇ ਲਗਾ ਤੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਜ ਬੁਝਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਤੇਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੁੱਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਾ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁਝਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਾ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਰਿਆ। ਤੂੰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਮਿੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਲ ਮਿੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਰਲੋਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇਲ, ਵਿਆਹ ਦਾ पहले दिन मिथिया जाता है, तारीख मिथी जाती है, फिर उस दिन जो शगन किए जाते हैं खास करके तरीक मिथण तो बाद, ते जद कोई पहुचा पुरानी रस्म नाई या कोई होर पहुचा उन्हों भेजते सन लड़की आले दे घर भी बराती कितने आने, बरात किन्ने क बजे पहुंचेगी, वो सारा हाल इस ढंग का दसदा सी ताकि देते घर वाले पूरी तैयारी करन। तो लड़की नू लड़की दियां सहेलियां चाचियां ताइयां होर संबंधना इशनान करा के तेल आदक की रस्म अदा कर दियां सन, उसके मस्तक ते तेल लाना, ये एक शगन सी, ये एक रस्म सी। सतगुरु उस रस्म का इत्थे हवाला दें दिन कि मौत का दिन तो मिथ्या गया, व्याह का दिन तो मिथ्या होया, मौत व्याह। मैं कल आरंभ की सी भूमिका कि जिस दिन मौत व्याह बनी, जिस दिन मौत खुशी बनी, समझ लेना जिंदगी सफल हो गई। मौत गम है, मौत दुख है, मौत मौत है, तो जिंदगी भी गम है, जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी बोझ है अगर मौत गम है। मौत खुशी है तो जिंदगी ते आनंद हो गई, जिंदगी ते खेड़ है, जिंदगी ते मस्ती हो गई। पर जे मौत गम है, मौत दा भय है, मौत व्याह नहीं, तो खिमा करनी व्याह भी व्याह नहीं अगर मौत व्याह नहीं है। मौत खुशी नहीं, मौत शादी नहीं, तो शादी भी शादी नहीं है, जिंदगी भी शादी नहीं है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तो दिन ते मिथ्या होया, सतगुरु कहिंदे दिन मिथ्या होया, निश्चित है। होर ते सब कुछ अनिश्चित है, इहदे बारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मौत निश्चित है, लाजमी है। एक गल वखरी है कि उस निश्चित थित दा सानू ना पता होवे, सतगुरु नूं पता, इस वास्ते कहिंदे ने ओह ते गिणिया गया, संबत ते गिणिया गया, साहा ते गिणिया गया, दिन ते निश्चित हो गया, दिन ते जो है मिथ लिया गया। इस वास्ते सतगुरु देव जी महाराज बोलते ने उस जीव कामण की तरफों जिसका दिन मिथ्या जा चुके है, निश्चित हो चुके है, उसकी फरियाद का जिक्र करते हैं। हे सहेली आओ, हुण तुसी मिल के मैनू तेल लाओ, मैनू तोरन की तैयारी करो, मैं सुख नाल जा सकां, और सिर्फ मैनू तैयार ही ना करो। देहो सजन असीसड़ियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल, असीसा भी दो जिस घर तुम बैठे हो सहेलियां, इन्हों आख्या जा रहा सतसंगियां, असीस भी दो, शुभ असीसा भी दो, कि ऐसा ही ना हो सिर्फ मैं तुरा बरात तुरे मेरे दर तक पहुंचे ते मैं अपने घर तक ना पहुंचा, भटक जावा रह जावा। इस वास्ते असीस करो, बख्शिश करो, ताकि उस साहिब नाल, उस परिपूर्ण परमात्मा नाल मेल भी होवे, मौत मेल बने, मौत विछोड़ा ना बने, मौत आनंद बने, मौत सोग ना बने। जद कदी ये पंक्ति सुभावक पढ़न लगे हाँ या कथा करन लगे हाँ सामने आवे, मैनू इको एक पुरुष सामने आ जाता है, कानपुर का बाबा जगत सिंह। सुभावक को चलाना करन लगे, सारी जिंदगी वो धर्म ग्रंथ पढ़ते रहे पढ़ाते रहे, तो पट्ठे का उन्हों का कम इटा का, लेकिन पट्ठे ते बैठ के भी पाठ उन्हों का जारी रहिंदा सी। जिस दिन अंतम दिन से संगत उन्होंने घर पहुँचन लगियां, तो किधर मेरे कन्ना च भी खबर पहुँच गई कि बाबा जगत सिंह जी चलाना कर रहे हैं, मैं भी पहुँच गया, डॉक्टर भी बैठा होया से मायूस, मैनू देख के इशारा किया भी मेरे कोल आण बैठो, मैं कोल चला गया। जबान नाल कुछ कहना चाहते सन, सकत नहीं सी, शरीर कमजोर हो गया, प्राण निकल रहे सन। एक पंक्ति फिर मैं बड़ी मुश्किल नाल सुनी, यही सी, देहो सजन असीसड़ियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल, संगत दी तरफ इशारा करके इतना कह के उन्हां दा दम निकल गया। वो पुरुष अजे तक मैनू याद है कि जांदियां जांदियां उहदी रसना ते गुरु नानक दी इह पंक्ति सी, संगत तो असीस मंग रहा सी, आए हुए सतसंगियां तो असीस मंग रहा सी। साहिब इत्थे कहिंदे ने, देहो सजन असीसड़ियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल, ये मौत विछोड़ा ना बने, ये मौत साहिब दा मेल बने। ਇਹ ਮੌਤ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿੱਤ ਪਵਨ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਸਦੜੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰੋ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿੱਤ ਪਵਨ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦੜੇ ਪੈਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਆਵਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੋ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।